arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास, वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव।
मध्यकालीन भारत एवं विश्व, मध्य युग में चीन। राजनीतिक घटनाक्रम। ईसा की 7वीं शताब्दी के आरंभ में चीन पर ताड़ राजवंशों का शासन था। इस राजवंश ने चीन को कुशल प्रशासन दिया, राज्य सेवा के लिए पुनः प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत की, धर्म के मामले में उदार नीति अपनाई गई और वाणिज्य व्यापार को उन्नत बनाया गया। ताड़ राजवंश के शासन 618 से 909 ईस्वी के बाद लगभग 300 साल तक सूंड राजवंश ने शासन किया। उसके बाद करीब 100 साल तक चीन में मंगोलों ने शासन किया। उस समय एशिया और यूरोप के अनेक भागों पर मंगोलों की धाक जम गई थी। उनके शासन काल में चीन में विज्ञान और संस्कृति का विकास जारी रहा। मंगोलों के शासन के बाद चीन में लगभग 300 वर्षों तक मिडवंश के राजाओं ने राज किया। सन 1665 में मंचू जाति के लोगों ने चीन पर अधिकार कर लिया। इस जाति के राजा सन 1911 ईस्वी तक चीन में शासन करते रहे। मध्यकालीन चीन के राजनीतिक इतिहास का इतना महत्व नहीं है जितना कि उसकी संस्कृति तथा उपलब्धियों का है। वस्तुतः 6वीं शताब्दी से जबकि चीन पर साम्राज्यवादी आधिपत्य कायम हुआ, 19वीं शताब्दी तक के लंबे समय के दौरान चीन की सर्वतोमुखी उन्नति प्रायः लगातार होती रही। कृषि, शिल्प, व्यापार और वाणिज्य। इस समय जनता मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थी। अधिकांश लोग चावल, ज्वार, बाजरा, चाय और गन्ने की खेती करते थे। रेशम का उत्पादन बढ़ा। राजाओं का ध्यान सिंचाई के साधनों को विकसित करने पर रहता था। बहुत सी नहरों और बांधों का निर्माण हुआ। रहट का आविष्कार होने पर उन खेतों में पानी पहुंचाया जा सका जिनका धरातल नहरों के धरातल से ऊंचा था। मध्यकाल चीन एवं विश्व। हान वंश के राज्यकाल में भी चीन के विदेशी व्यापार का पर्याप्त महत्व था। इस काल में पहले की अपेक्षा उसकी अधिक उन्नति हुई। चीनी वस्तुएं, विशेष रूप से रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तनों और कागज की मांग देश में बढ़ी। चीनी मिट्टी के बर्तन चीन की वस्तुओं में विशेष स्थान रखते हैं। वे अपनी उत्तम गुणवत्ता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। चीन का व्यापार वियतनाम, हिंदेशिया, भारत, मध्य एशिया, ईरान, बिजेंटाइन साम्राज्य और अन्य बहुत से देशों के साथ होता था। जिस मार्ग से काफिला मध्य एशिया, ईरान और बिजेंटाइन साम्राज्य तक जाता था वो बड़ा रेशम मार्ग कहलाता था। चीन के व्यापारिक नगर या तो समुद्र तट पर स्थित थे या व्यापारिक मार्गों पर। चीन मसाले, चंदन की लकड़ी, हाथी दांत और बारीक कपड़ों का आयात बड़ी मात्रा में करता था। देश का धन विदेश न जाए इसलिए सूंड शासकों ने कागज के नोट चलाए। वास्तविक मुद्रा के स्थान पर कागज के नोटों का प्रचलन आजकल कहीं आश्चर्य की बात नहीं, किंतु जब चीनियों ने कागज के नोटों का प्रचलन शुरू किया तब किसी भी देश में उनका प्रचलन नहीं था। 15वीं शताब्दी के पश्चात मिडवंश के शासकों ने विदेश व्यापार को प्रोत्साहित नहीं किया। उन्होंने अपने देशवासियों को स्वतंत्र रूप से विदेश जाने की अनुमति नहीं दी। विदेशी व्यापार कैंटन बंदरगाह से ही हो सकता था। विदेशों से संपर्क स्थापित करने पर प्रतिबंध लग जाने से चीन की उन्नति में बाधा पड़ी। मध्य युग में साधारण व्यक्तियों का जीवन आमतौर पर बहुत कठिनाई भरा था। अपना सारा समय खेतों पर काम करने में वो बिताते थे। उनकी उपज का बड़ा भाग कर वसूल करने वाले अधिकारी ले लेते थे। उन्हें अपना निर्वाह करने के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। वे किले और महलों के निर्माण में मजदूर के रूप में लगाए जाते थे। मध्य युग में बड़ी बड़ी जमींदारियां बड़े सरकारी, बड़े सैनिक अधिकारियों के हाथों में आ गईं। वे किसानों की उपज का 2/3 भाग ले लेते थे। यदि फसलें खराब हो जाती तो हजारों किसान भूखे मर जाते थे। कभी कभी किसान उनके क्रूर व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। चीन के धनी निवासी शानदार कोठियों में भोग विलास का जीवन बिताते थे। वे काम करने से घृणा करते थे। उनकी कुछ विचित्र आदतें भी थीं, जैसे कि वो उंगलियों के नाखून बहुत बढ़ा लेते थे और उन पर चांदी का पत्थर मढ़वा लेते थे। कला और विज्ञान के क्षेत्र में चीनियों की उपलब्धियां। जन साधारण का जीवन बहुत दुखमय होने पर भी मध्यकाल में चीन में मानव ने अनेक क्षेत्रों में उन्नति की। अत्यंत प्राचीन काल में चीन के निवासी चुंबक पत्थर के चुंबकीय गुण जानते थे। मध्य युग में उन्होंने कुतुबनामा बनाने में इस ज्ञान का प्रयोग किया। इसमें पानी पर तैरती हुई मछली के आकार के लोहे की कील लगाई जाती थी, जिसमें चुंबकीय आकर्षण शक्ति होती है। इसी काल में चीनियों ने बारूद का आविष्कार किया। ये उनकी दूसरी महान उपलब्धि थी। ये बारूद को अग्नि औषधि कहते थे और इनका प्रयोग आतिशबाजी के लिए करते थे। चीन में बारूद का आविष्कार 10वीं सदी में हुआ। पश्चिमी संसार के निवासियों को बारूद के आविष्कार का ज्ञान लगभग 400 वर्षों के बाद हुआ। चीनियों ने ज्योतिष यंत्रों और यांत्रिक धारियों का आविष्कार किया। वे लोहे तथा इस्पात को ढालने की क्रिया भी जान गए थे। चीनियों ने लोहे की झूलती जंजीरों वाले पुल 10वीं शताब्दी में ही बना लिए थे। उन्होंने पहले पहल छापने की कला का आविष्कार किया। प्रारंभिक दिनों में वे जो कुछ छापना चाहते थे उसे लकड़ी के चौखटों पर खोद लेते थे। उस पर स्याही लगाकर उसके द्वारा जितनी प्रतियों की आवश्यकता होती थी वे छाप लेते थे। बाद में 11वीं शताब्दी में वे अलग अलग अक्षरों को जिस रूप में चाहे लगाने लगे। पहले ये अक्षर पक्की मिट्टी के बनाए गए और फिर धातु के। इस आविष्कार के कारण अधिक पुस्तकों को छापना संभव हो गया। बहुत से मनुष्य पुस्तकें खरीद सके। ज्ञान के प्रसार के लिए इस आविष्कार का उतना ही महत्व था जितना कि कागज के आविष्कार का। प्राचीन काल से इतिहास, गद्य और कविता संबंधी जो साहित्य जमा हो रहा है वो समृद्ध हुआ है। चीनी लिपि को लिखने के लिए ब्रश, कागज और रेशम के प्रयोग के कारण चित्रकला की काफी उन्नति हुई। चीन के निवासियों ने इस काल में अनेक पैगोड़े बनवाए, जिससे वहां की वास्तुकला का अध्ययन किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के प्रचार से मूर्तिकला का काफी प्रोत्साहन हुआ। संभवतः बौद्ध स्तूप की संकल्पना चीनी वास्तुकला से प्रभावित है। एक जमाने में चीन में बौद्ध धर्म का इतना प्रचार हो गया कि वो चीन का मुख्य धर्म हो गया था। किंतु कन्फ्यूशियस के धर्म के पुनः स्थापित होने पर बौद्ध धर्म अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय हो गया। धर्म और विशेषकर पूर्वजों की पूजा का इस काल में चीन निवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। मध्ययुगीन जापान। राजनीतिक घटनाक्रम। एशिया के इतिहास में जापान का अलग वैशिष्ट्य है। यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियां जापान पर कब्जा नहीं कर पाई। जापान ही एशिया का पहला देश था जिसने आधुनिक उद्योगों के विकास का मार्ग अपनाया। वो साम्राज्यवादियों के चंगुल से बच निकला और साम्राज्यवादी देश बन गया। जापानी इतिहास की अपनी कई विशेषताएं हैं। जापान सैकड़ों छोटे द्वीपों से बना है, जिनमें चार प्रमुख द्वीप हैं: होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइको। जापानी द्वीपों और एशिया के मुख्य भूमि के बीच करीब 150 किलोमीटर का अंतर है। इस अंतर ने जापान और पड़ोसी देशों के बीच संपर्कों में बाधा नहीं डाली, लेकिन इसके कारण जापानी लोग लंबी अवधियों तक अपने को शेष दुनिया से अलग रख पाए। ईसा की करीब 7वीं शताब्दी में जापान की राजधानी टोक्यो बनी और ये नगर आगे के 1000 से भी अधिक सालों तक जापान के सम्राटों का निवास स्थान बना रहा। परंतु वास्तविक सत्ता एक अभिजात परिवार के हाथों में रही। 12वीं शताब्दी के अंतिम सालों में जापान में शोगुन नामक एक नई राजनीतिक सत्ता आई। शोगुन या जनरल जापानी सेना के अध्यक्ष बने। ये शोगुन जापान के ऊपर शासन चलाते थे और सम्राट राजधानी टोक्यो में रहता था। शोगुन का पद पैतृक हो गया। 1879 ईस्वी तक शोगुन ही जापान के वास्तविक शासक थे। जापान के इतिहास का अगला महत्वपूर्ण दौर 17वीं शताब्दी के आरंभ में तोकुगावा यासु के शोगुन बनने पर शुरू हुआ। वो तोकुगावा राजवंश का संस्थापक था। सामाजिक और आर्थिक दशा। जापान का राजनीतिक विकास मुख्यतः भू संपत्ति पर अधिकार के लिए हुए संघर्षों के साथ जुड़ा रहा। आरंभिक काल में बड़ी संख्या में निजी जागीरें थीं, जिन पर दास कृषि कार्य करते थे। जागीरदारों को केंद्रीय सरकार को कर नहीं देने पड़ते थे। राजा भी बड़े भूभाग का मालिक था, मगर भारी करों के बोझ के कारण किसानों ने राज्य की इन जमीनों का त्याग कर दिया था। तब राज्य ने अपनी जमीन समुराई नामक योद्धाओं में वितरित कर दी। ये समुराई कुछ पश्चिमी यूरोप में नाइटों जैसे थे। इस प्रकार जापानी समाज में भूस्वामियों के विभिन्न समूहों का उदय हुआ। बौद्ध विहार भी बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे। किसान जमीन के साथ जुड़े हुए थे और उसे छोड़ नहीं सकते थे। किसान खेती के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी स्थिति कृषि दासों जैसी हो गई। तोकुगावा शोगुनों ने जापानी समाज को एक कठोर अधिक्रम से संगठित किया। सबसे ऊपर यहाँ वंश परंपरा थी, सबसे ऊपर समुराई योद्धा थे, मगर समुराई वस्तुतः एक मिलाजुला समुदाय था जिसमें डाइम्योंस शासन के अधिकारी और सामान्य सैनिक शामिल थे। समुराइयों को सिद्धांततः विशेषाधिकार मिले हुए थे, परंतु उनमें जो सामान्य सैनिक थे वे विशेषाधिकारों से प्रायः वंचित थे। उनका कोई स्वामी नहीं होता था, उनकी दशा दयनीय होती गई। इस अधिक्रम में दूसरा क्रम किसानों का था। उनका भयंकर उत्पीड़न होता था। उन्हें कर और लगान देने के अलावा अपने सरदार की बेगारी भी करनी होती थी। अधिक्रम में दस्तकार और कारीगर तीसरे क्रम पर थे। आखिरी समुदाय व्यापारियों का था। उद्योग और व्यापार में वृद्धि हुई तो समाज में व्यापारियों की वास्तविक हैसियत भी बढ़ गई। शिल्पों और उद्योग के साथ साथ उनके शहरों का भी विकास हुआ। अंतरद्वीपीय और विदेशीय व्यापार में वृद्धि ने भी शहरों और नगरों के विकास में योगदान दिया। तांबे के सिक्के चलाए गए और मुद्रा चलन बढ़ा। इस काल में जापान प्रमुख रूप से ताम्र, अयस्क, सोना और चांदी का निर्यात करता था। तोकुगावा के शासनकाल में राज्य ने विदेश व्यापार को अपने हाथों में लिया था, परंतु उन्होंने शेष दुनिया से अलग रहने की नीति अपनाई। उसने किसी भी व्यक्ति को जापान से बाहर जाने नहीं दिया। विदेशियों को देश से निकाल दिया। केवल कुछ डच व्यापारियों को ही रहने की अनुमति दी। इस तरह जापान शेष दुनिया से लगभग पूरी तरह कटा रहा। संस्कृति और धर्म। आरंभिक काल में चीनी सभ्यता ने जापानी जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित किया। प्राचीन काल से ही दीर्घकालीन चीनी प्रभाव को जापानी लिपि में देखा जा सकता है। जापानी भाषा चीनी भाषा से काफी भिन्न है। जापानियों द्वारा इस लिपि को 400 ईस्वी के आसपास अपनाया गया, मगर इसमें उन्होंने ध्वनि संकेतों, अक्षरों को भी जोड़ा। आरंभिक जापानी साहित्य भी चीनी साहित्य से प्रभावित था, परंतु व्याख्यानों, इतिहासों और कविताओं के लेखन के साथ शनैः शनैः विशिष्ट जापानी साहित्य का विकास आरंभ हुआ। अभिजात परिवारों की महिलाओं ने काव्य और उपन्यास लिखे जो खूब प्रसिद्ध हुए। मध्ययुगीन जापानी साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि है कू नामक काव्य शैली, जिसमें 17 अक्षरों की छोटी छोटी कविताएं लिखी जाती थीं। मध्य युग में विकसित हुई काबुकी नामक नाट्य शैली ने दुनिया के अनेक देशों की आधुनिक नाट्य कला को बड़ा प्रभावित किया। मध्ययुगीन जापान के अन्य कला क्षेत्रों की उपलब्धियां भी बड़ी प्रभावशाली थीं। वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य और मिट्टी के पात्र, लाख की वस्तुएं आदि बनाने में जापानी कलाकार और कारीगर बड़े कुशल थे। जापान के प्राचीन धर्म को शिंतो कहते हैं। इस धर्म की प्रमुख विशेषता है प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। जापान में बौद्ध धर्म चीन से कोरिया के रास्ते 6वीं शताब्दी के आरंभ में पहुंचा और आगे की शताब्दियों में ये खूब फला फूला। बीच की कुछ अवधि में इसने शिंतो धर्म को लगभग मिटा ही दिया था। जापानी संस्कृति के विकास में बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जापानी कला और विहारों, मंदिरों तथा मूर्तियों के निर्माण पर बौद्ध धर्म की गहरी छाप पड़ी है। बौद्ध मंदिरों के निर्माण में अत्यधिक धन खर्च किया गया। नारा में 8वीं शताब्दी में निर्मित एक बौने मंदिर का एक कक्ष करीब 95 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा है और 50 मीटर ऊंचा था। इस मंदिर में स्थापित बुद्ध की कांसे की मूर्ति करीब 10 मीटर ऊंची है। ईसाई धर्म जापान में 61वीं शताब्दी में पहुंचा और थोड़े समय में ही अनेक जापानी इसके अनुयायी बन गए। तोकुगावा शासक ने जापान को शेष दुनिया से अलग रखने की नीति बनाई थी। उन्होंने 17वीं शताब्दी के आरंभ में इस धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। अनेक ईसाई मारे गए और दूसरों को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया गया। मध्ययुगीन जापानी लोगों की सांस्कृतिक उपलब्धियों ने आधुनिक जापानी संस्कृति के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार की थी, लेकिन जापान की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था उत्पीड़न पर आधारित थी। ये नीति जापान के अनेक शासकों द्वारा अपनाई गई। अलगाव की नीति ने जापान की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्थाओं पर अनेक घातक प्रभाव छोड़े। संसार के सभी देशों में मध्य युग एक ही समय नहीं आया। यूरोप और पश्चिमी देशों में मध्य युग 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक समझा जा सकता है। कहा जा सकता है कि पूर्व के देशों में मध्य युग पश्चिमी देशों में इसकी समाप्ति के बाद भी चलता रहा। इस काल में कलाओं के विकास में काफी प्रगति हुई, अनेक जनगणों का सम्मिश्रण हुआ और संस्कृतियों के पारस्परिक समन्वय से सभी संस्कृतियां समृद्ध हुईं। इस काल में अरब की सभ्यता सबसे अधिक विकसित थी। अरब सभ्यता में ज्ञान वृद्धि में महान योगदान दिया। यूरोप में इस ज्ञान का प्रसार वहां हुए पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण था।
स्मरणीय बिंदु। कला और विज्ञान के क्षेत्र में चीनियों की उपलब्धियां। मध्यकाल में चीनियों ने अनेक क्षेत्रों में उन्नति की। उन्होंने कुतुबनुमा बनाया, इसमें पानी पर तैरती हुई मछली के आकार के लोहे की कील लगाई गई जिसमें चुंबकीय आकर्षण शक्ति होती थी। चीन में बारूद का आविष्कार 10वीं सदी में हुआ। संस्कृति और धर्म। चीन एवं जापान में आरंभिक काल में चीनी सभ्यता ने जापानियों के जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित किया। जापान में प्राचीन धर्म को शिंतो कहते हैं। इस धर्म की मुख्य विशेषता है प्राकृतिक शक्ति की पूजा। जापान में बौद्ध धर्म कोरिया के रास्ते से 6वीं शताब्दी के आरंभ में पहुंचा। मध्ययुगीन जापान की कला के अन्य क्षेत्रों की उपलब्धियां भी बड़ी प्रभावशाली हैं। वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, वस्त्र, लाख की वस्तुएं आदि बनाने में कारीगर बड़े कुशल थे।
अरपा रेडियो.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।